सलाम वालेकुम दोस्तों, भाई क्या हाल है सबके। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, आप मेरे साथ हैं उस प्रोग्राम रोशन सितारे में। क्या 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 कहा आपने? आप ही? ओह, वो तो मैं भी देख रहा हूँ कि आप ही दिखाई नहीं दे रही कहीं। खैर कोई बात नहीं, आती होंगी। आप सुनाए भाई, स्कूल का दिन कैसा रहा? क्या आप ही के बगैर मज़ा नहीं आ रहा प्रोग्राम में आज? वो तो है, मुझे ही बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। क्या करें, इंतज़ार करते हैं, कहीं ना कहीं किसी काम में वो फंस गई होंगी। कोई बात नहीं, आती होंगी। अच्छा पता है मेरा स्कूल का दिन है ना, वो आज बस ठीक ही गुजरा। होमवर्क जो बहुत सारा मिला था ना।
टिंकू दोस्तों,
आप ही आ गई?
आ गई मैं, माफ कीजिएगा देर हो गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे? बहुत बहुत माजरत, माफ कीजिएगा, एक काम में फंस गई थी ना, देर हो गई।
आप ही कैसे हैं?
मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं?
मैं ठीक हूँ। ये क्या आपके हाथ में?
मेरे हाथ में तुम देख रहे हो
क्या है?
इससे फूलों और पौधों को पानी दे देना, दरख्तों को। ये वो है।
क्यों आपने, क्यों क्या खरीद कर लाई है कहीं से?
नहीं बाबा, तुम्हें पता है क्या हुआ?
क्या हुआ?
वो जो हमारे पड़ोसी नहीं है, वो जो तीन घर छोड़ के रहते हैं।
अच्छा हाँ, समझ गया।
समझ गए ना, जिनके तीन बच्चे हैं छोटे छोटे।
समझ गया समझ गया।
हाँ, वो लोग गए हैं सफर पर।
सफर पर?
हाँ, कुछ तकरीबन 10-12 दिन के लिए कहीं गए हैं दूसरे शहर।
12 दिन के लिए?
हाँ, कोई फौतगी हो गई है ना, तो उन्हें वहाँ जाना पड़ गया। तो अब वो पता है मुझे क्या कह के गए? वो कह के गए कि समाना, तुम है ना मेहरबानी करके हमारे पौधों को पानी दे दोगी? अगर तुम नहीं दोगी तो हमारे पौधे तो मुरझा जाएंगे, 10 दिन तक पानी नहीं मिलेगा। तो
फिर आप अभी इनको पौधों को पानी देने गई थी?
हाँ ना भाई, तो भाई मैंने उनसे कहा था, मैंने उनसे वादा किया था कि मैं
इनका काम करूंगी। आपने जिम्मेदारी कबूल की थी?
हाँ भाई दोस्तों, मैंने जिम्मेदारी कबूल की थी कि मैं उनके पौधों को पानी दूंगी। तो अब जाहिर है अगर जिम्मेदारी कबूल की हो तो फिर पूरा तो करना चाहिए ना। तो इसीलिए मैं वहाँ गई थी पानी देने। अब पानी देते देते इतनी देर हो गई, अचानक मैंने जो घड़ी देखी, मैंने कहा ओहो प्रोग्राम का टाइम हो गया है। भागते 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 मैं आई। ये देखो मैं रखा भी नहीं मैंने वहाँ, यही हाथ में लेकर ही आ गई।
बात बताएं मुझे।
हाँ पूछो।
तो आप पानी ना दें?
क्यों
भाई, प्रोग्राम में आप देर से पहुंचती हैं, आप थक जाती तो ना दे पानी।
भाई तो मैंने उनसे वादा किया है ना कि मैं रोज उनके पौधों को पानी दूंगी।
ओह, देना जरूरी है क्या?
हाँ ना भाई, देखो मैंने चूंकि वादा किया है तो मुझे देना ही पड़ेगा पानी पौधों को।
वो तो यहाँ पर है नहीं, उनको पता भी नहीं चलेगा, तो ना दे पानी।
भाई मैंने तो वादा किया है ना, मुझे तो पता है ना। और गलत बात होगी ना अगर मैं वादा खिलाफ ही कहूंगी भाई। या तो मुझे जो है ना वादा करना ही नहीं चाहिए था, मुझे कह देना चाहिए था कि नहीं भाई नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं आपके पौधों को नहीं दे सकती पानी। लेकिन अब चूंकि मैं कह चुकी हूँ कि भाई,
यानी आपने जो जिम्मेदारी कबूल की है वो आप आखिर तक निभाएंगी?
जी हाँ। लेकिन पता है क्या मुझे क्या करना चाहिए था?
क्या करना चाहिए था?
चूंकि मैंने जिम्मेदारी तो कबूल की है और मुझे निभानी भी चाहिए, और मैंने प्रोग्राम की भी जिम्मेदारी कबूल की है, तो मुझे करना ये चाहिए था कि थोड़ा सा वक्त का ख्याल रखना चाहिए था।
वक्त का ख्याल रखना चाहिए था।
अगर मैं सोच लेती ना कि इतनी देर लग जाएगी तो मैं इस टाइम पर इस वक्त पर नहीं जाती पानी देने, मैं थोड़ा और जल्दी चली जाती।
मतलब मैं क्या करता?
ताकि पता है क्या? ताकि दोनों जिम्मेदारियां मेरी पूरी हो जाए, प्रोग्राम की जिम्मेदारी भी पूरी हो जाए और पौधों वाली जिम्मेदारी भी पूरी हो जाए।
मैं क्या करता?
क्या करते?
मैं अगर उनसे बोलता भी ना तो पानी नहीं डालता।
क्यों?
तो कौन सा देख रहे हैं वो हमें?
यानी तुम
दिन में एक बार डाल देता ना।
यानी तुम जिम्मेदारी कबूल करते और पानी नहीं डालते?
तो क्या जिम्मेदारी जिम्मेदारी जो अपने ऊपर लेता है उसे आखिर तक निभानी चाहिए उस बात
को? जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी कोई जिम्मेदारी कबूल करें या वादा करें या अपने सर पर कोई काम लें तो उसे जरूर 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 पूरा करना चाहिए। कोई भी तुम्हें किसी भी किस्म की जिम्मेदारी देना, और वो छोटी से छोटी क्यों ना हो, उसे फिर पूरा किया करो।
एक बात बताओ, एक बात बताओ, अचानक मेरे जहन में बात आई।
क्या याद आया?
पता है जिम्मेदारी से मुझे बात याद आई।
क्या याद आया बोलो ना।
पता है मैंने भी ना जिम्मेदारी कबूल की थी।
अच्छा क्या जिम्मेदारी? चलो ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि जिम्मेदारी ली थी फिर पूरी भी की होगी। तो दोस्तों इस उम्मीद के साथ हम चलते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ और देखते हैं प्रोग्राम का प्यारा सा रंगारंग सा मजेदार सा अगला हिस्सा। हमारे साथ रहिएगा। मैं ऐसा करती हूँ जब तक है ना ये रख के आती हूँ, पता नहीं है मैं कहाँ से लेकर आ गई।
चल आप रख दे, मैं
यही रख दूँ। क्या बोलते?
यही रख दे,
जाते वक्त वैसे भी पता ही है
Thank you.
जिम्मेदारी कबूल की थी।
हाँ तो बताओ ना, लेकिन सब्र करो ना, दोस्त आ जाएं फिर साथ में बताना।
दोस्त तो आ गए।
आ गए?
आ गए।
काए काए काए। आ ये रहे। दोस्तों खुशामदीद, दोबारा से आपके अपने प्रोग्राम रोशन सितारे में।
हाँ।
और टिंकू मियां में बता रहे थे कि जिस तरह से मैंने अभी एक जिम्मेदारी कबूल की है पौधों को पानी देने की, टिंकू मियां ने भी जिम्मेदारी कबूल की हुई है भाई।
जी
हाँ। तो
मैंने
जी
कबूल की थी जिम्मेदारी,
की थी पहले,
की थी।
अच्छा क्या हुआ था? और यकीनन पूरी भी की होगी है ना?
अब उस बारे में तो खैर चले बाद में ही पता चलेगा।
चलो ठीक है, तुम हमें अपना किस्सा सुनाओ।
होता कुछ ऐसा है कि एक दिन मैं जा रहा था रोटी खरीदने,
ठीक है,
फिर मैंने अम्मी से जिद की, अम्मी अम्मी मैं मिंकू को भी साथ लेकर जाऊंगा, मिंकू मेरा भाई है ना भाई, मैंने कहा अम्मी मैं मिंकू को भी साथ लेकर जाऊंगा,
सही।
अम्मी ने कहा नहीं नहीं बेटा ये छोटा, आप भी छोटे हो, आप इसका हाथ पकड़ोगे, नहीं पकड़ोगे तो ये गुम जाएगा ये सब। मैंने कहा अम्मी मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगा मिंकू को, और फिर इसका हाथ भी नहीं छोड़ूंगा इसका।
सही, पूरा आपने पूरा अम्मी से कहा कि मैं टिंकू की जिम्मेदारी अपने सर लेता हूँ और मैं इसके सारे काम करूंगा।
जी हाँ, और इसका हाथ भी नहीं छोड़ूंगा ना, ठीक है, भाग ना जाए, बहुत शैतान है ना, शरारती है।
हाँ, आपका भाई मिंकू तो बहुत ही शरारती है, लेकिन आपसे कम।
अम्मी अम्मी जैसे तैसे करके मान दी।
अच्छा, मान गई अम्मी?
मान गई अम्मी।
अच्छा, ये सोच के मान रही होंगी कि भाई टिंकू मियां कह रहे हैं और हाँ। बड़े हो गए हैं तो ध्यान रखेंगे बड़े भाई की तरह।
मैंने वादा किया कि मैं इसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी लूंगी,
ठीक है। फिर
मैं और मिंकू निकले भाई रोटी खरीदने के लिए,
सही।
और फिर रस्ते में हमने इतनी सारी बातें की, और बातें करते ही चले गए।
अच्छा भाई, बड़ा मजा आया होगा।
और अचानक जब मैंने अपने हाथ की तरफ देखा, ओह मिंकू तो है ही नहीं।
कहाँ चला गया था मिंकू?
वो ना मैं बातों में इतना खो गया था कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने कब ना कब थी मिंकू का ना मिंकू का हाथ छोड़ दिया।
मेरे खुदा, दोस्तों देखा आपने टिंकू मियां ने क्या किया? फिर
बस कुछ नहीं, मैंने रोना शुरू कर दिया।
अच्छा, फिर
मैंने कहा लोगो लोगो मेरा एक भाई है जिसका नाम मिंकू है, गुम गया, किसी ने देखा है?
हाँ।
लेकिन सबने कहा ना।
तो आप बातें किससे कर रहे थे? आप कह रहे थे मैं बातें करता हुआ जा रहा था, तो बातें किससे कर रहे?
मिंकू को अपनी स्कूल की कहानियां सुना रहा था।
और आपको पता ही नहीं चला कि कब मिंकू का हाथ आपके हाथ से छूट गया?
खो गया ना, मुझे पता ही नहीं चला।
ओहो, फिर कैसे मिला?
आप ही सबने इतना ढूंढा, मैंने फौरन फौरन अम्मी अब्बू को इतला दी। मैंने कहा भाई अम्मी सोना मिंकू ना मुझसे खो गया कहीं।
अच्छा,
अम्मी ने रोना धोना शुरू कर दिया। और फिर अब्बू ने पुलिस को फोन लगाया। और फिर जैसे तैसे करके ना पूरे दो से तीन घंटे बाद ना मिंकू जो है, मेरी सांस फूल गई।
मिंकू जो है ना, कि मिल तो गया, लेकिन एक बात बताओ टिंकू, जब तुमने जिम्मेदारी कबूल की थी तो फिर बातों में नहीं खोना चाहिए था ना, टाइट से अपने भाई का हाथ पकड़ना चाहिए था जबरदस्ती जोर से।
मुझे क्या पता था कि भाई जिम्मेदारी कबूल करना इतना सख्त काम होगा और मिंकू भाग जाएगा और सब मुझे डांटेंगे। फिर
भाई तो जब तुमने अपनी अम्मी से कहा था ना, अपनी अम्मी से क्या कहा था?
मैंने कहा मैं
टिंकू का ख्याल रखूंगा, कहीं इसको खोने नहीं दूंगा, इसको कुछ भी नहीं होगा। और फिर क्या किया तुमने? अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। दोस्तों देख रहे हैं आप टिंकू मियां का हाल।
जी हाँ, देखा मैंने ऐसा। क्या हुआ?
कुछ बू आ रही है दोस्तों आप लोगों को।
बू? कौन सी बू?
देखो बू आ रही है किसी चीज के जलने की।
जलने की बू आ रही है?
हाँ। आप लोगों को आ रही है?
आपके लिए चाय बनाई थी।
चूल्हा बंद करना भूल गए?
बंद करना भूल गया।
टिंकू दोस्तों आप लोग देखे अगला प्रोग्राम और मैं टिंकू के साथ जाके देखती हूँ कि क्या चीज जलाई है इन्होंने।
अब मैं क्या करूँ?
चलती हूँ मैं तुम्हारे साथ, देखती हूँ। चलो जल्दी से चलो, जल्दी 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 चलो।
मदद करें। चाय हो? अब मैं क्या?
जल्दी 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 आओ, इधर से आओ, पीछे से आओ।
कहाँ से आऊँ? यहाँ से, वहाँ से?
पीछे से आओ, मैं देखती हूँ कौन सा चूल्हा होगा।
बात आई थी कि इसकी आवाज इतनी बुरी है, दीवार के ऊपर से देखा तो उसे एक आदमी नजर आया जिसके हाथ में कोई चीज थी और वो दीवार पे मुसलसल मार रहा था। बड़ी अच्छी बात हो गई, यहाँ कुछ हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, जरा तुम मुझे वो रास्ता सिखाओ तो जिसके जरिए से तुम मुर्दों को
फूलों और पौधों में तब्दील करना कोई मुश्किल बात नहीं, वो बहुत ही बड़ा है, इसलिए तुम बुतों को छोड़ के उस
आजी अपनी जगह से नहीं उठा, वहीं बैठे रहे अपनी जगह पर। सिर्फ रसूल खुदा सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम बाहर आए और फिर आवाजें निकाले जा रहे हैं। उसे कुछ समझ नहीं आई, वजीर ने आकर
आहिस्ता और पैवस्ता।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? इंशाल्लाह कि आज भी आप लोग पूरे शौक के साथ टेलीविज़न सेट के सामने आकर बैठे होंगे ताकि आज की कहानी आपको सुनाएं हम लोग। जी प्यारे बच्चों, आज की कहानी का इंतखाब भी मैंने सादी की हिकायतों में से किया है और इस कहानी का उन्वान है आहिस्ता और पैवस्ता। प्यारे बच्चों, इस कहानी से आप लोगों को पैवस्ता के हकीकी मायने भी पता चल जाएंगे कि क्या है। हमारी इस कहानी का हीरो है बड़ा ही तेज तरार इंसान जिसका नाम खुसरो है, और इसकी तेज तरारी किस में है? भागने में, दौड़ने में। खुदा ने इसको बड़ा ही ताकतवर बदन दिया है और ऐसे पांव और टांगे दी हैं कि ये, मैं आपको क्या बताऊं, कि हवा की तरह भागता है। कोई इसका सानी नहीं था, इनके पूरे शहर में खुसरो की तरह कोई नहीं भाग सकता था। और इसी चीज़ ने खुसरो को बड़ा मगरूर और घमंडी बना दिया था। वो जानता था कि मैं बेनज़ीर हूँ, मेरे जैसा कोई भी नहीं है, कोई मेरी तरह भाग नहीं सकता, किसी की भी मुझ जैसी मजबूत टांगे नहीं हैं। बहरहाल बच्चों, एक दिन क्या होता है कि इनके शहर का जो हाकिम था, उसने किसी खुशी की वजह से अपने इलाके के लोगों को एक दावत दी, और इस दावत में सब लोगों को पता था कि बड़े किस्म किस्म के मज़ेदार खाने होंगे, बिरयानी होगी, मुर्ग पुलाव होगा, ये होगा, वो होगा, और कई लोगों को लालच था इस मेहमानी में, इस दावत में जाने का। लेकिन जानते हैं आप कहाँ पर उसने ये दावत दी थी? शहर से बाहर बहुत ही दूर उसकी एक बड़ी शिकारगाह थी, और इस दावत का अहतमाम उस शिकारगाह में किया गया था। कई लोग तो ऐसे थे कि उनको इस दावत में जाने में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी, लेकिन प्यारे बच्चों, बाज़ लोगों को इस दावत में जाने का बहुत शौक़ था। वो चाहते थे, और बल्कि वो जानते थे कि इस दावत में जो बिरयानी पकाई गई है वो बड़ी ही मज़े की होगी, और कैसे कैसे इसमें मुर्ग बनाए गए होंगे, कैसे कैसे रोस्ट मुर्ग होंगे, और उनको ये खाना खाने का शौक़ भी था। लेकिन पूरे एक दिन का फासला यहाँ से वहाँ शिकारगाह तक, अरे नहीं, इतनी हिम्मत हम में नहीं है, ये सोच के बैठ गए। लेकिन जिस शख्स का मैंने ज़िक्र किया ना अभी, खुसरो, जो कि बहुत तेज़ भागता था, इसने तो ठान ली कि मुझे तो जाना ही जाना है इस दावत में, और मैं खूब मुर्ग उड़ाऊँगा और बिरयानी खाऊँगा। बहरहाल फैसला किया और चल पड़ा। इसको तो अपने ऊपर बड़ा एतमाद भी था और घमंड भी था। और जानते हैं आप, सफ़र के शुरू में ही इसने तेज़ तेज़ दौड़ना शुरू कर दिया। इसी तरह जब दौड़ता जा रहा था तो उसने सड़क पे देखा कि एक बड़े मियाँ हैं, ताज़ा दम होने के बाद फिर से चल पड़ते हैं, थोड़ा सा चलते हैं, चलते चलते फिर रुक जाते हैं। अजीब सी उनकी कोई हालत थी। खुसरो, जो कि बड़े घमंड में था और इतरा रहा था अपनी इस ताकत पर, तो इतराते हुए उसने कहा, ए कदीमी जवान, एक पुराने वक्तों के जवान, ये क्या चलने का तरीका है? तेज तेज चलिए ना, आप इतना आहिस्ता आहिस्ता क्यों जा रहे हैं? तो बड़े मियाँ ने खुसरो की तरफ मुंह करके कहा, अरे जवान, तुम आओ, देखता हूँ कहाँ तक पहुँचते हो। खुसरो साहब को ये बात बड़ी बुरी लगी और अपने साथ कहने लगा, हूँ बड़े मियाँ को देखो, मुझको कह रहे हैं कि कहाँ तक पहुँचते हो। भाई, मैं तो इतना तेज़ तेज़ चलता हूँ, मैं तो इतना ताकतवर इंसान हूँ, अभी पहुँच जाऊँगा मैं। खैर, वो इसी तरह चलते चलते अब आहिस्ता आहिस्ता, प्यारे बच्चों, उसका बदन में दर्द होने लगा और कुछ कुछ थकावट का उसको एहसास होने लगा। वहीं रोड के किनारे उसने एक दरख्त देखा, और ये सायादार दरख्त था, वहाँ वो बैठा, और बैठते ही उसने सोचा, भाई मैं तो वैसे भी इतना तेज़ चलता हूँ, अभी पहुँच जाऊँगा, चलो थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। और आराम करते ही उसको एकदम नींद आ गई, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, हवा में उसको नींद आ गई गहरी, और सो गया। और इस मैं नींद में अजीब अजीब ख्वाब देखने लगा कि वो मुर्ग उड़ा रहा है और खा रहा है और मज़े कर रहा है। एकदम से वो उठा घबरा के और कहा, अरे पता नहीं मैं कितनी देर सोया हूँ। उठा, चलने लगा तो देखा उसके पूरे बदन में, पट्ठों में, हड्डियों में दर्द हो रहा है। इतने में बड़े मियाँ भी वहाँ से गुजरे और कहा, अरे क्या हुआ है बेटे, क्या थक गए हो, आओ ना, चलो ना। तो खुसरो ने जवाब दिया कि नहीं, मैं थका थोड़ी हूँ, बस आता हूँ, मैं तो आपसे आगे निकल जाऊँगा, मैं तो तेज़ चलता हूँ। लेकिन प्यारे बच्चों, जब ये चलने लगा तो उसने देखा उसके पट्ठों में और हड्डियों में बहुत शदीद दर्द है, उसको चला ही नहीं जा रहा है। तो बड़े मियाँ ने कहा कि बेटा, लगता है तुम्हें हवा लग गई है, क्योंकि जब तुम यहाँ पहुँचे तो पसीने से शराबोर थे, और ज़ाहिर है यहाँ ठंडी हवा चल रही थी, तुम लेट गए यहाँ पर, अब उठे हो तो तुम्हें ज़ुकाम हो गया है, तुम्हारी हड्डियों को और बदन को हवा लग गई है, इसीलिए तुम्हारे बदन में दर्द हो रहा है। خسرو نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں ہوا میں چلتا ہوں. جب چلنے لگا دیکھا نہیں واقعی وہ نہیں چل پا رہا ہے تو بڑے میاں نے کہا آؤ آؤ چلو چلو میرے ساتھ آہستہ آہستہ چلو ابھی ٹھیک ہو جاؤ گے. بڑے میاں اس کو واعظ و نصیحت کرنے لگے کہ دیکھو انسان کو آرام آرام سے چلنا چاہیے اور یہ دیکھنا. اب تم یاد ہے کہ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ آہستہ کیوں چل رہے ہو, دنیا تو بھاگ رہی ہے, دوڑ رہی ہے, آپ بھی دوڑیے آپ بھی بھاگیے. تو بیٹا یہ دنیا بھاگے دوڑے یا جو مرضی کرے تم اپنے سیدھے راستے پر آرام سے اور سکون سے چلو اور اس سے کچھ کام نہیں رکھو کہ دنیا کیا کر رہی ہے اور کیا نہیں. تم اپنی طاقت اور توان کو دیکھو اور آرام آرام سے اپنے راستے پر اگر تم چلتے رہو گے تو آخر کار جو تمہاری منزل ہے وہ پا لو گے. لیکن دنیا کے ساتھ اگر بھاگنا دوڑنا شروع کرو گے تو ظاہر ہے بیچ راستے میں تم تھک جاؤ گے, تمہارا بدن ٹوٹنے لگے گا, تو پھر تم پیچھے رہ جاؤ گے. بڑے میاں پورے راستے اسی طرح کی واعظ و نصیحت کرتے رہے, سمجھاتے رہے اس لڑکے کو, خسرو کو سمجھاتے سمجھاتے ان کو پتہ ہی نہیں چلا, یعنی باتوں میں اتنے وہ لوگ مصروف ہو گئے کہ حاکم کے باغ تک پہنچ گئے اور ان کو راستے کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنی چڑھائی والا اور طویل راستہ وہ لوگ طے کر کے حاکم کے باغ تک پہنچے ہیں. تو پیارے بچوں آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ انشاءاللہ کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. تو اگلی کہانی تک اجازت دیجیے, خدا حافظ.
دوستو پتہ ہے ٹنکو نے کیا کیا تھا؟ ٹنکو میاں نے چائے بنانے رکھی تھی میرے لیے اور پھر سے ذمہ داری لی تھی کہ میں چائے بناؤں گا آپ ہی کے لیے اور چولہا بند کرنا بھول گئے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ چائے پوری جل گئی. وہ تو اچھا ہوا کہ ہم وقت پر پہنچ گئے اور کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا.
جی اب میں کیا کروں
بھائی؟ ٹنکو اگر تم ذمہ داری قبول کرتے ہو تو اسے پورا کرنا چاہیے.
آپ ہی کیسے, میں بھول جاتا ہوں.
بھائی تو اس ذمہ داری پر قبول مت کیا کرو.
نہ کروں.
ہاں دوستو اگر آپ بھی ذمہ داری قبول کرتے ہیں تو پھر اسے ضرور پورا کیا کیجیے. اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ذمہ داری قبول کر لیں اور پھر اسے پورا نہ کریں. مثلاً میں نے ذمہ داری قبول کی کہ میں پڑوسیوں کے پودوں کو, درختوں کو پانی دوں گی. اب چاہے کچھ بھی ہو جائے, چاہے میں جتنی بھی مصروف ہوں, مجھے وقت نکالنا ہے, اپنے وقت کو اس طرح سے ترتیب دینا ہے کہ میں وہ کام بھی انجام دے سکوں. یعنی مجھے اپنے وقت میں جگہ نکالنی ہے یہ کام کرنے کی.
اچھا جی ایسا ہے کیا؟
تو اگر آپ نے ذمہ داری قبول کی ہے کہ جیسے میں منکو کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا روٹی لینے کے لیے, تو آپ کو بھی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے تھی.
یعنی میرا دھیان جو ہے باتوں میں نہیں ہونا چاہیے.
جی آپ کا دھیان باتوں میں نہیں ہونا چاہیے تھا, منکو کی طرف ہونا چاہیے تھا. اور اگر آپ نے سوچا کہ میں آپ ہی کے لیے چائے بناتا ہوں, ایک ذمہ داری لیا آپ نے, تو آپ کو چاہیے کہ اسے پوری کریں, دھیان رکھیں وہیں پر, بھولنے کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے.
اب میں کیا کروں, مجھے غلطی ہو گئی.
ہاں بس اب یہ کریں کہ آئندہ کے لیے دھیان رکھیں. اور دوستو آپ بھی آئندہ کے لیے, یعنی ٹنکو کے لیے کہہ رہی ہوں, آئندہ کے لیے آپ تو یقیناً ہمیشہ دھیان رکھتے ہی ہوں گے. جب بھی کوئی کام اپنے سر لیں, جب بھی کسی سے وعدہ کریں, جب بھی کوئی ذمہ داری قبول کریں تو اسے انجام تک پہنچائیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ ذمہ داری قبول کریں اور وہ کام نہ ہو پائے. نقصان نہیں ہوگا کہ وہ کام نہ آپ کریں گے نہ وہ شخص کرے گا جس نے آپ کو ذمہ داری دی ہے. کام ادھورا رہ جائے گا اور پھر سب لوگ کہیں گے بھائی ٹنکو کو تو کوئی کام دینا ہی نہیں چاہیے, یہ تو کام پورا کرتا ہی نہیں ہے.
ایسا ہے کیا؟
جی ایسا ہی ہے.
آج سے میں نے بات جو ہے وہ سوچ لی ہے.
کیا؟
جو کام میں نہیں کر سکوں گا میں اس کی ذمہ داری بھی نہیں لوں گا.
بس اور جو کام کریں گے, جو ذمہ داری اپنے سر لیں گے, پھر اس کو پورا کریں گے.
ضرور میری کوشش یہی رہے گی.
بالکل اچھی بات. تو دوستو ہم نے بھی ذمہ داری لی ہے کہ آپ کو دکھائیں گے مختلف رنگا رنگ پروگرام جس سے آپ لطف اندوز ہو سکیں, مزے لے سکیں. تو ایسا کرتے ہیں, چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی طرف تاکہ آپ کے مزے ہو جائیں. تو بالا دیکھتے رہیے گا پروگرام روشن ستارے.
جی ہاں میں بھی دیکھوں گا, مجھے بھی اچھے لگتے ہیں پروگرام دیکھنا.
Somebody has been distracted by this matter for too long. Our country has been distracted by this matter, for too long.
अगर जिम्मेदारी कबूल करें तो उसे ज़रूर पूरा करें, और अगर आपको लगता है कि मैं ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकूंगा तो उसे हरगिज़ हरगिज़ कबूल ना करें।
ठीक है,
आप बताएं कि क्या आपके साथ कभी हुआ है ऐसा वाकया कि आपने जिम्मेदारी कबूल की हो और उसे पूरा ना कर पाए हो? हमें ज़रूर बताइएगा ईमेल एड्रेस के ज़रिए। हमारा ईमेल एड्रेस है roshansitare@setv.ir। हमें आपकी ईमेल का इंतज़ार रहेगा, हमें ईमेल्स करते रहिएगा और बताते रहिए कि आप कैसा महसूस करते हैं जब आप जिम्मेदारी पूरी ना कर पाए, और ये भी बताइएगा कि कैसा महसूस करते हैं जब जिम्मेदारी पूरी कर पाते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए आप ही और
मुझे टिंकू को इजाजत।
फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़। बच्चों
अपना बहुत ख्याल रखिएगा,
बहुत ज्यादा
दुआओं में याद रखिएगा,
हमें भी।